नमस्कार। स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट सायरा।
Namaskar, Adab, and a very warm welcome to all our listeners who have joined us in this very fresh episode of Parikrama. And yes, in Parikrama, हम लोग देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, of course, to get some interesting stories through our correspondents. Apart from that, we have a selection of national and international news. And Akarshita, we all know that today the Paris Olympics are going to have a very grand opening ceremony later this evening. तो उसके बारे में भी जानेंगे through our correspondent who is present there. And of course, since these are the centenary celebrations, so zahir hai wo kuch khas to honge hi. And as Akarshita already mentioned, that we'll also remember some of the personalities who either have their birth or death anniversaries or their birthdays. Aur aaj ek writer ka keh sakte hain, ek yaad karenge jinki aaj birth anniversary bhi hai aur death anniversary bhi hai. So very few people they probably bid adieu on the same day to this world when they entered this world as well. Keep guessing, listeners. And first we come with the headlines. Prime Minister Narendra Modi says Pakistan is trying to keep itself relevant with the help of terrorism and proxy war. Pays tributes to brave hearts of Kargil war on the occasion of 25th Kargil Vijay Diwas in Dras.
प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना पर गलत सूचना फैलाने के लिए विपक्ष की आलोचना की। कहा, देश के युवाओं को गुमराह करने वालों के मन में अतीत में भी सशस्त्र बलों के प्रति कोई सम्मान नहीं था।
External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar says political, economic and security cooperation with ASEAN is of utmost priority.
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने म्यांमा में बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
US Senator Marco Rubio introduces bill in American Congress aims to strengthen US-India partnership and counter China's influence in Indo-Pacific region.
और पेरिस 2024 ओलंपिक खेल आज शाम सीन नदी पर ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होंगे।
And yes, today we are remembering all the brave hearts who gave up their lives in the line of duty, because today is Kargil Vijay Diwas aur wahi topic hai aaj hamare Dateline India ka. Kargil Vijay Diwas, which is celebrated every year, is a significant day in the history of our country. It is observed to pay tribute to the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives for the country during the Kargil War of 1999. It also commemorates the country's victory over Pakistan in the Kargil War and marks the successful culmination of Operation Vijay. In this operation, the Indian Armed Forces reclaimed the territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. Kargil Vijay Diwas is a solemn reminder of their sacrifices and a celebration of their valor, serving as a unifying moment of national pride and gratitude. This year in 2024, Prime Minister Narendra Modi is set to visit Dras in Ladakh on 26 July to honour the 25th anniversary of Kargil Vijay Diwas.
भारत संस्कृति, क्षमा और साहस की भूमि है। ये देश और इसका इतिहास दुनिया के लिए उल्लेखनीय और प्रेरणादायक है। भारतीय सबसे कठिन ऋषियों से गुजरे हैं और फिर भी अपना गौरव बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। हमारे सैनिकों ने कई लड़ाइयां लड़ी हैं और उनमें जीत हासिल की है। ऐसा ही एक यादगार युद्ध है करगिल। इस भूमि को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए 26 जुलाई को करगिल दिवस मनाया जाता है। साल 1999 में करगिल युद्ध में देश के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। ये युद्ध लगभग 60 दिनों से ज्यादा चला था और 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तानी सेना को पराजित कर करगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। करगिल युद्ध कठिन परिस्थितियों में लड़ा गया था। कड़ाके की ठंड, दुर्गम भूभाग और पाकिस्तानी सेना का मजबूत किला, इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए हमारे वीर जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी। कप्तान विक्रम बत्रा जैसे वीर सैनिकों की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। उनकी वीरता और देश प्रेम युवाओं के लिए आदर्श है। करगिल युद्ध में ऐसे ही कई सैनिक थे जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया, जिन्होंने अपने से कई ज्यादा मजबूत दुश्मन का सामना किया। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम हमेशा अपने देश के लिए समर्पित रहेंगे, अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेंगे और शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे।
कंधों से मिलते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना।
अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना।
अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना।
कदमों से मिलते हैं चलते, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं चलते, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
निकले हैं मैदान में हम चाहते दी पर लेकर।
And Akarshita, let's tell our listeners that PM Modi already arrived earlier in Ladakh in Dras to pay his tributes to the heroes of the Kargil War on the occasion of the 25th anniversary of Kargil Vijay Diwas. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said that this great land of Ladakh is witnessing the 25th anniversary of Kargil Vijay Diwas. He said that this day tells us that the sacrifices made for the nation are immortal. Prime Minister Modi said he wants to tell the patrons of terrorism that their nefarious intentions will never succeed. He added that Indian soldiers will crush terrorism with full force and the enemy will be given a befitting reply.
साथियों, कारगिल की विजय ये किसी सरकार की विजय नहीं थी। कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था। ये विजय देश की थी। ये विजय देश की विरासत है। ये देश के गर्व और स्वाभिमान का पर्व है। 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मेरे वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। सभी देशवासियों को पुनः एक बार कारगिल विजय के 25 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं।
President Draupadi Murmu also paid tributes to the armed forces on Kargil Vijay Diwas. In a social media post, the president acknowledged the extraordinary valor of the Indian Armed Forces.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर करगिल युद्ध के नायकों को पुष्पांजलि अर्पित की। सेना के उपप्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एन राजा सुब्रमणि, नौसेना के उपप्रमुख वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन, वायुसेना के उपप्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह और सीआईएससी के लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन पी मैथ्यू ने भी जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
And Home Minister Amit Shah also remembered the valor of the brave soldiers of the army on Kargil Vijay Diwas today. In a social media post, Mr. Shah expressed gratitude to the soldiers for showcasing ultimate valor in the inaccessible mountains of the Himalayas and for forcing the enemy army to retreat.
संसद के दोनों सदनों ने करगिल युद्ध के दौरान वीरता से लड़ने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने सैनिकों के शौर्य और बलिदान का स्मरण करते हुए कहा कि सैनिकों ने युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया।
And in Rajya Sabha, Chairman Jagdeep Dhankar said that the grateful nation is celebrating the 25th anniversary of Kargil Vijay Diwas, cherishing the indomitable courage and valour displayed by the Indian Armed Forces during the Kargil War. Both the houses witnessed a moment of silence in memory of soldiers who lost their lives during the war.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Yes, and in our journey of Parikrama today, we start with Odisha. In Biju Patnaik International Airport, Bhubaneswar, it added another feather in its cap by launching the Digi Yatra facility for the convenience of flyers. The facility is now operational at 14 airports for domestic passengers, and discussions are going on with various stakeholders concerned to make it available for international travellers as well. The facility, introduced by the Ministry of Civil Aviation and Digi Yatra Foundation, is the next step towards creating a digitally empowered society. It will enable automatic digital processing of flyers, reduce waiting time, and make boarding process faster and seamless. More details from our Cuttack correspondent.
Digi Yatra uses facial recognition technology for passengers' entry inside terminals and their security clearance at the airport. With the new facility, the passengers will now be able to experience hassle-free and paperless process. Within seconds, it matches the passenger's face with the one uploaded in Digi Yatra app with Aadhaar number. Once matched, e-gate that is synchronized with the system opens and allows the passenger to go inside. This facility will reduce waiting time at the terminal entrance as well as check-in area. Passengers need to be careful in furnishing data like name so that they do not mismatch. The digital data is foolproof and there is no scope of any duplication. At the Biju Patnaik International Airport, 4 departure gates have e-gates, while 8 boarding gates are equipped with face ports. The airport has made modification at the terminal's entrance where tickets and identity proofs are shown check-in counters. Biju Patnaik International Airport Director Prasanna Pradhan said, passenger will have to download Digi Yatra app on smartphones through Google Play Store and link it with their Aadhaar cards. The flyers can then upload their boarding pass on the app to avail digital service at the airport. At present, there are 48 departures and an equal number of arrivals at the airport, which is witnessing a daily footfall of more than 14,000 passengers. Initially, the officials hope at least 10% of passengers departing from Bhubaneswar Airport every day will use a new facility. The number is expected to go up in coming days. Tapan Maharana for Parikrama from Cuttack.
और अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप रोजगार मूलक शिक्षा और कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान करने के लिए अभिनव प्रयास किया जा रहा है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं भोपाल से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा।
मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने कैरियर पोर्टल तैयार किया है। इसका उद्देश्य प्रदेश में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार कैरियर विकल्प उपलब्ध कराना है। पोर्टल पर 500 से अधिक कैरियर संबंधी विकल्प दिए गए हैं। इसके अलावा 7500 से अधिक कॉलेज, 1000 से अधिक प्रवेश परीक्षाएं और 750 से अधिक छात्रवृत्तियों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। इससे विद्यार्थी अपनी पसंद का विकल्प चुन सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षिक एवं कैरियर के विकल्पों के चयन के लिए कैरियर काउंसलिंग के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था ICS लखनऊ के साथ अनुबंध भी किया है। इस अनुबंध के आधार पर प्रदेश के समस्त विद्यालयों में कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। काउंसलिंग एवं गाइडेंस से संबंधित कौशल विकास के लिए 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित भी किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक जिले से 2-2 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में चुना गया है और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी दिलाया गया है। राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा विद्यालय में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम वोकेशनल ट्रेनर को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के लिए आवश्यक हार्ड एवं सॉफ्ट स्किल के विकास की जानकारी ICS कैरियर GPS मोबाइल ऐप पर पंजीयन के बाद विद्यार्थियों को उनकी रुचि और एप्टीट्यूड के अनुसार कैरियर से संबंधित विकल्पों की जानकारी दी गई है। शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने आसपास के स्कूलों के बीच सकारात्मक तालमेल रख सकें, इसके लिए प्रत्येक जिले में 10 चयनित विद्यालयों में कल्चरल ट्विनिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों को आसपास के विद्यालयों में कला, खेल और करियर से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। विद्यार्थियों को संस्कृति, परिवेश, साहित्यिक आयोजन और संवाद जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। परिक्रमा के लिए भोपाल से मैं संजीव शर्मा।
Supreme Court Judge Justice V.R. Gavai has invited citizens to participate in the Apex Court's Mega Special Lok Adalat Week commencing from the 29th of July. In an exclusive interview with Akashvani News, Justice Gavai highlighted the remarkable success of Lok Adalats in resolving disputes amicably in the past. He emphasized that Lok Adalats serve as a vital means to deliver swift and affordable justice to the people.
The Supreme Court is organizing a mega Lok Adalat week commencing from 29 July to 3rd August. As all of us know that Lok Adalats are a means to provide a speedy and affordable justice to the citizens. Various matters such as matrimonial matters, family disputes, property disputes, service disputes, motor accident claims disputes, so also the land acquisition matters can be resolved through the Lok Adalat. Supreme Court has also decided to conduct this Lok Adalat by video conferencing so that the citizens in the remotest parts of the country can take part in it. I am sure that the litigants from the entire country, as well as the state governments, the insurance companies and other organizations would take benefit of this and resolve their disputes amicably so that a speedy justice is available to the litigants.
The Moidams of Assam has received the prestigious 43rd UNESCO World Heritage Site tag in the cultural category. Nearly 700 years old, Moidams are hollow walls of brick, stone and contain the remains of kings and royals. The inclusion of Moidams was decided unanimously by the World Heritage Committee meeting that was held in New Delhi earlier. And now it's time for Azadi Ka Safar.
Birth of a Nation. India's glorious freedom struggle is one of the greatest struggles the modern world has ever witnessed. Brings you a glimpse of the struggle every day.
On July the 26th, 1876, Surendranath Banerjee, along with Anand Mohan Bose, founded the Indian National Association in Calcutta. The Indian Association was the most prominent of the pre-Congress organizations.
Social and economic changes started occurring in the 19th century that also led to an increase in the political consciousness, leading to the birth of political associations and national movements for independence. In 1875, Sisir Kumar Ghosh and Shambhu Charan Mukherjee founded the India League to represent the middle class and work towards a sense of nationalism among the people.
However, the league was dismembered and afterwards, Surendranath Banerjee founded the Indian Association along with his friend Ananda Mohan Bose on the 26th of July, 1876. It wanted to bring about the unity of the Indian races and peoples on the basis of common political interests and aspirations. It objected to the decrease in the age limit for candidates for the Indian Civil Service Examination in 1877.
The association advocated for simultaneous civil service examinations in England and India, as well as the Indianization of higher administrative positions. The Indian Association also spearheaded a campaign to repeal the Repressive Arms Act and the Vernacular Press Act.
The Indian Association established branches in other towns and cities throughout Bengal as well as outside of Bengal. The membership fee was kept low in order to attract members from the poorer sections of society. The association sponsored the first All India Conference, which was held in Calcutta from December the 28th to 30th, 1883. More than 100 delegates from across the country attended. The Indian Association later merged with the Indian National Congress in 1886.
We remember Malti Devi Chaudhary, who was an Indian civil rights and freedom activist, born on the 26th of July, 1904. She was deeply influenced by both Gurudev Rabindranath Tagore and Mahatma Gandhi. While studying at Shantiniketan, she met her future husband and they both relocated to present-day Odisha.
The salt satyagraha started soon after and Malti Devi Chaudhary threw herself into the movement. She had organized the Krishika Andolana, that is the farmers' movement, as part of the freedom struggle against the zamindars and moneylenders who exploited the poor.
After independence, Malti Chaudhary, as a member of the Constituent Assembly of India and as the president of the Utkal Pradesh Congress Committee, tried her best to emphasize the role of education, especially adult education, in rural reconstruction. She also joined the Bhudan movement of Acharya Vinoba Bhave. The noble soul breathes her last on the 15th of March, 1998.
We also remember Ismail Khan, who was an inhabitant of the Bombay Presidency. He took part in the struggle for freedom from the foreign rule in 1857 and also led his neighbors in attacking the British establishments and trying to overthrow the Company Raj. Ismail was caught by the company troops in the course of an engagement and charged with plundering the government properties and rebellion against the British. He was sentenced to imprisonment for life and was transported to the Andaman Islands on 7th of March 1859, where he died on the 26th of July 1859. We salute the brave martyr Ismail Khan.
और अब खेल के मैदान की सबसे बड़ी खबर, पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों की शुरुआत आज से होगी। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का आयोजन पेरिस में सीन नदी के किनारे भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से होगा।
And we have our correspondent Savio who is present there. I'm sure, Savio, a very electrifying moment because the opening ceremony is due in just a couple of hours, isn't it? So what is the latest update, Savio?
Hi to everyone from India and hello from Paris, because this is a great day in the lives of all Frenchmen and French women, because the Olympics are being held here after 100 years. The last time the Olympics were held were in 1924, and this is 100 years later. So they are all set, they are all geared up, and so much so that they have thought of a lovely idea wherein for the first time the opening ceremony is going to be held outside the stadium. So that's a fabulous idea, because all the athletes, there are more than 10,000 athletes who will be featuring in these Olympics. So the instead of the parade that is generally held inside the stadium, these athletes will be showcased to the world in boats on the River Seine, which is the main artery of the French capital. And having said that, I must also tell you all that the flag bearers for India will be none other than double Olympic medalist P.V. Sindhu, who we hope will go for gold this time, and of course, whom I call the man who is the king of longevity, Sharad Kamal, the table tennis star. They'll be leading the Indian contingent in Paris. It's going to be a fabulous display. The torch relay will be brought in by superstars from the film industry, Salma Hayek, and the music industry, Snoop Dogg. It's going to be a fabulous evening.
Right, Savio. We can imagine that you're going to have a great, great moment to witness in history of the world, I would say. And well, keep giving us the latest updates from there. We will look forward to that. Thanks, Savio.
और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा या फिर आज के दिन इस दुनिया में कदम रखा। आज फिल्म अभिनेता जुगल हंसराज का जन्मदिन है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत शेखर कपूर की फिल्म मासूम में एक बाल कलाकार के रूप में की थी। उन्होंने कर्मा और सल्तनत जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में अपना करियर जारी रखा और 2017 में जुगल बच्चों के लिए अपने पहले उपन्यास क्रॉस कनेक्शन द बिग सर्कस एडवेंचर के साथ एक प्रकाशित लेखक बन गए। उन्होंने अपने वयस्क करियर की शुरुआत 1994 में आ गले लग जा से की, जहां उनकी जोड़ी उर्मिला मातोंडकर के साथ थी, जिन्होंने उनकी पहली फिल्म मासूम में उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। उनकी दूसरी फिल्म 1995 में मयूरी कांगो के साथ पापा कहते हैं थी। आइए सुनते हैं मासूम फिल्म से उनका ये डायलॉग।
आप मुझे मिलने आएंगे?
हाँ बेटे, जरूर है। जवाब दें।
आप मुझे तुमसे भूल तो नहीं जाएंगे?
नहीं बेटे, कभी नहीं, अब नहीं। तुम तो नहीं भूलोगे?
मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ?
That was Little Jugal Hansraj in Masoom. And we're also remembering the writer, as I said in the beginning of the show, who has his birth as well as death anniversary on the same day. So, aise akarshita bade kam log hote hain ki jis din wo jo hai is duniya mein aaye usi din rukhsat bhi hoye. And today we are remembering Ibn Safi on his birth as well as death anniversary. And Ibn Safi was the pen name of Asrar Ahmed, who was a fiction writer, novelist and a poet of Urdu literature. And the word Ibn Safi is a Persian expression which literally means the son of Safi, where the word Safi means chaste or righteous. He first wrote in India in the 40s and later till in 1947. And his main works were the 125 book series, Jasusi Dunya. Ye unki sabse famous series rahi, Jasusi Dunya. Aur mere khayal se jo bhi Urdu ka jankar hai, wo Jasusi Dunya se bilkul keh sakte hain wabasta hoga. And even the 120 book Imran series with a small canon of satirical works and poetry. His novels were characterized by a blend of mystery, adventure, suspense, violence, romance and comedy, achieving massive popularity across a broad readership in South Asia. Because Akarshita, Urdu ke baare mein ye kaha jata hai ki wo sirf sher o shayari aur mohabbat aur you know romance ki zuban hai. So unhone ye challenge liya tha when he got to know that people consider Urdu as the language of only romance. So then he came out with these you can say series of adventure and mystery and thrillers, you can say. So that was Ibn Safi.
आज विद्यावती कोकिल की जयंती है। विद्यावती कोकिल को भारत की प्रसिद्ध कवित्रियों में से एक माना जाता है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं का प्रथम काव्य संकलन प्रणय प्रगति एवं जीवनाभूति के हृदयग्राही गीतों के संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ। कोकिला जी मूलतः एक गीतकार थी और गीत तत्व की सहज तरलता उनकी कविताओं की आंतरिक विशेषता है और उनकी मुख्य रचनाएं थी सुहागिन मां सुहाग गीत आदि।
Today we are also remembering the great Indian painter, sculptor and filmmaker Tayyab Mehta on his birth anniversary, part of the Bombay Progressive Artist Group and the first post-colonial generation of artists in India, like John Wilkins, He also broke free from nationalist Bengal school and embraced modernism instead, with its post-impressionist colors, cubist forms, and brusque and expressionistic styles. और इसके साथ ही आकर्षिता घड़ी इशारा दे रही है दैट वी नीड टू रैप अप आवर शो.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और सायरा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की.
नमस्कार, नमस्कार।